ये आज का इंसान कैसे ऐसा करे, कैसे ऐसा करे इंसान आज का इंसान, जब उसकी तारीख ये कह रही है कि जमाने यूसुफ में दूसरा बादशाह था, जमाने मूसा में दूसरा बादशाह था, तारीख ये कह रही है, और बाइबल ये कह रही है कि दोनों जमाने में एक थे। आप बताइए कि कैसे एक इंसान जो तारीख का इल्म रखता हो दोनों बातों को बैकवर्ड मानेगा, तो बाइबल को लेने के लिए कुरान तारीख को छोड़ना पड़ेगा, जबकि कुरान को लेने के लिए आपको तारीख को छोड़ने की जरूरत नहीं। आप तारीख की जमीन पर कह खड़े होकर कह सकते हैं कुरान खुदा की किताब है, तारीख की जमीन से हटने की जरूरत नहीं है। कितनी अजीब शान चीजें, अजीब शान इस बात नहीं कि मैं कुरान को अफजल किताब साबित कर रहा हूं, हर किस मेरा यकीन ही नहीं है, मैं हर किताब को खुदा की किताब मानता हूं, हर किताब खुदा की किताब मानता हूं। मैं जिक्र कर रहा हूं उस रूह का जो तड़प रही हो इस बात के लिए कि वो खुदा की किताब पाए, कहां पाए मुझे बताइए। मैं अफजलियत का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं रूह इंसानी का जिक्र कर रहा हूं, वो रूह जो तड़प रही है कि वो खुदा को पाए, मजहब को पाए, आसमानी हिदायत को पाए, खुदा की रोशनी को पाए, उस रूह के लिए कहां जवाब है मुझे बताइए, जबकि वहां उसको लेने के लिए उसको तारीख को छोड़ना पड़ेगा, उसको लेने के लिए उसको मंतक को छोड़ना पड़ेगा, उसको लेने के लिए राजे को छोड़ना पड़ेगा। अब बताइए कैसे कर सकता है इंसान। तो वो जो तड़पने वाले रूह है, वो जो तलाशक वाले रूह है, उस रूह को लिए कुरान एक मरहम है कि लो यहां आकर तुम सच्चाई को, लो यहां आकर तुम खुदा, ना तुम्हें तारीख छोड़नी है, न राजी छोड़नी है, न मंतक छोड़नी है। एक मिसाल और मैं देता हूं आपको, ये मिसाल है मार्क्स की। मार्क्स जो है एक अंग्रेज माहिर अर्थशास्त्र था, रॉबर्ट मार्क्स, जिसकी वफात अब से 150 साल पहले हुई, 200 वर्ष पहले दौराना है उसका समय, बात को 150 साल। तो रॉबर्ट माल्थस जो है ये बहुत ही काबिल आदमी था, और उसने एक किताब लिखी जिसने दुनिया के जहन को हिला दिया, सारे दुनिया के जहन को हिला दिया। उस किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का उसूल। तो उसने ही एक बहुत ही स्टार्टलिंग किस्म की, बहुत ही चौंका देने वाली बात कही थी। वो बात ये थी कि जो फितरत में या ये कुदरत में, जो कुदरत का जो निज़ाम है दुनिया में, जिसके तहत चल रही है दुनिया, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि इंसान के पास खुराक नहीं रहेगी कि वो जिससे खाकर जिए। तो नतीजा क्या है कि हमें इंसानी आबादी कम करना चाहिए। उसका खुलासा उसके ख्याल का इन अल्फाज में है, ये उसी के अल्फाज हैं कि पॉपुलेशन व्हेन अनचेक्ड इंक्रीजेस इन अ ज्योमेट्रिकल रेशियो, सब्सिस्टेंस ओनली इंक्रीजेस इन एन अर्थमेटिक रेशियो। मतलब इसका यह है कि आबादी अगर उसको छोड़ दिया जाए, कंट्रोल न किया जाए, आबादी को छोड़ दिया जाए यूं ही, तो वो ज्योमेट्री के तनासुब से बढ़ती है, और अशियाए खुराक जो हैं वो बढ़ती हैं अरिथमेटिक तनासुब से। ज्योमेट्री का तनासुब, अरिथमेटिक का तनासुब मतलब ये है कि एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है अरिथमेटिक तनासुब, अरिथमेटिकल तनासुब, और एक है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये है ज्योमेट्रिकल तनासुब। तो उसने ये बताया कि दुनिया का जो निज़ाम है ये, तो इसमें अशियाए खुराक के लिए गेहूँ और चावल और गल्ला और दाल और वगैरह, ये जो हैं ये बढ़ रही हैं इस तनासुब से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ रही, और इंसानी आबादी 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16, 32, 64 इससे भी बढ़ रही है। अब बहुत माइए इस नस्बत से, यानी अंदाजा लगाया गया है कि अब तक इंसान की आबादी कम से कम 8 गुना बढ़ जानी चाहिए, और बढ़ भी गई 8 गुना, बढ़ भी गई 8 गुना, और इसके मुकाबले में अशियाए खुराक बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी, 150 साल पहले। इसके माने ये कि हाँ 150 इस पेशींगोई के 150 वर्ष बाद वो वक्त आ गया था कि हम सब यहाँ न सुनने वाले हों न बोलने वाले, न कोई बोलने वाला जो बोले न कोई सुनने वाला सुने 150 वर्ष के बाद। क्योंकि आप गौर फरमाइए जो अशियाए खुराक बढ़ रही हों इतनी सुस्त रफ्तारी से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रुपए से, और इंसान बढ़ रहा हूँ इतनी तेज रफ्तारी के साथ 1, 2, 4, 8, 16, 32 तक बढ़ रहा है, कितना 150 वर्ष में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा खुराक। तो न हम बोलने वाले की कोई बोलने वाला मौजूद, कोई सुनने वाला मौजूद होगा, जमीन पर तो काफी लोग मर चुके होंगे। इस आपके जो गैस थी भोपाल में उससे करोड़ों गुना बड़ा हादसा पेश आना चाहिए था 150 वर्ष के अंदर, लेकिन हादसा पेश नहीं आया, हादसा पेश नहीं आया। इसके बरक्स कुरान मजीद में जो रॉबर्ट मालथस से 1000 वर्ष पहले उतरा था उस जमाने में भी ये नजरिया था, अगरचे जाहलाना अंदाज में रॉबर्ट मालथस ने उसको रियाजाती अंदाज से पेश किया, साइंटिफिक अंदाज से पेश किया, साइंटिफिक और रियाजाती हिसाब से पेश किया उसने। उस जमाने में जाहलाना नजरिया था, वो कहे ज़्यादा लड़के होंगे तो खाना कम हो जाएगा, तो लोग बुरा हाल रहेगा, इसलिए पेड़ कम पैदा करो, कदर कर देने कहते थे वो, कदर कर डालो। तो कुरान मजीद में आयत उतरी कि ला तक्तुलु औलादकुम खशयत इम्रा नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन क़त्लहुम काना ख़तअन कबीरा, ला तक्तुलु औलादकुम खशयत इम्रा नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, अपनी औलाद को मुहताजी के डर से कत्ल ना करो, इस डर से कि खाना ना रहे खाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से खाएंगे वो। तो फरमाया कि अपनी औलाद को मुहताजी के डर से कत्ल ना करो, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिस्क देंगे तुमको भी रिस्क देते हैं। अब गौर फरमाइए कि एक वो ख्याल है जो रॉबर्ट मालथस के ज़हन में आया और एक वो ख्याल जो कुरान मजीद में दिया गया, इसमें क्या है? वो जो मैंने अर्ज़ कहा था कि कोई भी शख्स जो बोलता है तो उसको माजी को भी टच कर रहा होता है और मुस्तकबिल को टच कर रहा होता है, चाहे वो इंसान बोले या खुदा बोले। तो खुदा का कलाम सही उतरता है, इंसान का बोले गलत उतर जाता है। अब देखिए कि रॉबर्ट मालथस का जो कलाम था सिर्फ 150 वर्ष में गलत साबित हुई कि इतनी गजा है। इस वक्त भी अखबार में आप पढ़ रहे होंगे कि दुनिया में गजा सरप्लस है, इस वक्त फाजिल इंडिया में भी सरप्लस है और दुनिया में भी सरप्लस है। वो तो खरीदारी जरूर कम है, लोगों को पैसा जरूर कम है, लेकिन गजा कम नहीं है, जितने इंसान उससे ज्यादा गजा है। तो कुरान जी ने जो बात कही गई थी कि इंसान की जो पैदावार बढ़ेगी मतलब मत करो, उसी नस्बत से गजा भी बढ़ेगी, खुराक भी बढ़ेगी उसी नस्बत से। इसमें बात क्या है? इसमें बात यह है कि रॉबर्ट मालथस पैदा हुआ 200 साल पहले, यानी साइंसी ज़राअत के वजूद में आने से पहले, आजकल के ज़माने में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। उस ज़माने में ज़राअत जो थी वो ट्रेडिशनल किस्म की थी, यानी हल बैल वाली ज़राअत। उसके रॉबर्ट मालथस के बाद एक नया रेवोल्यूशन आया, यानी कई बातें हुई। एक तो ये कि मशीनी ज़राअत पैदा हुआ, यानी जो आप हल चलाते थे बैल के जरिए से, उसी के ऊपर जो ट्रैक्टर चलाते हैं आप, तो ज़बरदस्त खुदाई करता है, ज़मीन को यानी इसके ऊपर खोद डालता है। दूसरी बात ये हुई कि नई नई खादें पैदा हुई। रॉबर्ट मालथस के ज़माने में मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन हासिल करने का कोई जरिया नहीं था। आप जानते हैं, जो लोग आप में से खेती करते होंगे वो जानते हैं कि नाइट्रोजन ज़राअत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन हासिल कैसे होती है? जो रवायती तरीका था रॉबर्ट मालथस के ज़माने में, तो सिर्फ दो ज़रिए थे जिनसे नाइट्रोजन इसमें हासिल करता था। एक था कि खेतों में जो दाल वाले पौधे बोते हैं, दाल फलों के दो होता है दाना, दो दाना मिलकर के, जैसे कि चना है या अरहर है या मटर है, तो कुदरत का निज़ाम यह है कि दाल वाले पौधों की जड़ में बैक्टीरिया जमा होते हैं। तो नाइट्रोजन हवा में बहुत काफ़ी मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट तौर पर हवा से दरख्तों को नहीं मिलती। ये मुमकिन नहीं है कि दरख्तों से डायरेक्ट तौर पर हवा नाइट्रोजन ले सकें, दरख्त ये हवा से ले सकें। तो तो बैक्टीरिया जो है उस नाइट्रोजन को हवा से लेकर के उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको उसकी जड़ में पहुंचाते हैं, लेकिन ये बहुत कड़ी मुद्दा में होता है। दूसरा जरिया ये था कि बरसात में जो बारिश होती जब है तो कड़क चमक पैदा होती है, तो कड़क चमक के जरिए से भी थोड़ा सा नाइट्रोजन हवा से निकल करके पानी में शामिल हो जाता है और वो बारिश को बनकर ग्रस्त बरसता है। तो थोड़ा सा नाइट्रोजन बदरिया कड़क चमक और थोड़ा सा नाइट्रोजन बदरिया बैक्टीरिया मिलता था इंसान को। अब क्या है, अब नाइट्रोजन मसनूई तौर पर पैदा किया जाता है, यानी इंसान ने ऐसे कारखाने बनाए हैं कि वो नाइट्रोजन नेचर मौजूद है उनको लेकर के और उनको खाद में कन्वर्ट करता है और वो जितने चाहे खरीद लीजिए बाजार से। तो एक मिसाल के तौर पर खाद का फर्क पड़ा, मशीनी ज़रात को ये मशीनी हथियारों का फर्क, मशीनी औजारों का फर्क पड़ा। इसी तरीके से एक फर्क ये पड़ा जो कहते हैं आजकल जमाने में ड्वार्फ पौधे, यानी पहले जमाने में मिसाल गेहूँ जो होता था तो गेहूँ में डंठल इतना बड़ा और दाना थोड़ा सा, लेकिन अब क्या है, अब नए नए पौधे दरियाफ्त करके उसको तरक्की दी गई है उनको कि पौधा थोड़ा सा होता है और उसमें दाने बहुत सारे निकलते हैं। अब जो लोग खेती करते हैं वो जानते होंगे कि नए नए जो बीज हैं नए बीजों के जरिए से फसल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हासिल होती है। तो ये और बहुत सारे आस्पेक्ट इसके हैं, आबपाशी के जरिए बहुत नए नए पैदा हो गए वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या हुआ कि पहले के मुकाबले में यानी रॉबर्ट बाल्थस के ज़माने में जो तरीका था ज़रात का उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई ज़रात। तो उसी ज़मीन से जिस ज़मीन से इंसान पहले खेती करता था और गल्ला पैदा करता था, 100 मन वहाँ 100 मन वो 10 मन वहाँ 100 मन पैदा करता है। ये जानते हैं किसान एक जिस खेत 10 मन पैदा होता था वहाँ 100 मन पैदा होता है, कई फसलें पैदा होती हैं और नए नए टुकड़े तोड़ तोड़ करके उनको खेत बना दिया गया, जंगलों को काट करते हो और क्या आता था कि खेत की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो खेत भी बढ़ गए और यानी मुख्तलिफ चीज़ों ने ज़रात को बढ़ा दिया तो दहेज गल्ला सरपरस्त हो जाएगा। तो इसके माने क्या हैं, अब यहाँ आप रॉबर्ट बाल्थस को बिला तशबीह में कह रहा हूँ, बिला तशबीह इंसान का खुदा का मुकाबला है, लेकिन बात को समझने के लिए कि रॉबर्ट बाल्थस के कलाम को देखिए और कुरान का जो मुसन्निफ उस कलाम को देखिए, तो कुरान का मुसन्निफ ये नज़र आता है कि मुस्तकबिल को भी देख रहा है और रॉबर्ट बाल्थस का जहन मुस्तकबिल को नहीं देख रहा। रॉबर्ट बाल्थस को इसका पता नहीं था जिस रेशियो से आबादी बढ़ेगी उसी रेशियो से गजा भी बढ़ेगी, ये पता नहीं था, लेकिन कुरान को पता था जिस रेशियो से आबादी बढ़ रही उसी रेशियो से खुराक भी बढ़ने वाली है, घबराते क्यों होकर। चुनाचा इस मौजू पर एक किताब छपी है, उस किताब का नाम है, उसका नाम ही है किताब का माल्थस द फॉल्स प्रॉफिट, माल्थस द फॉल्स प्रॉफिट यानी माल्थस ये बनावटी पैगंबर। और उसने उस किताब का जो आखिरी जुमला है वो ये है कि माल्थस वॉज रॉन्ग, वी आर नॉट डूम्ड टू ट्रीट आवर सेल्फ विथ फेमी, माल्थस गलती पर था, हमारे लिए मुकद्दर नहीं है कि हमारी नस्लें कहत में पैदा हो। ये आज की किताब है और ये कुरान में 14 फरवरी लिखा गया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो रूहें जैसे मैंने मिसाल दी थी शुरू में कि डॉक्टर ऋषिकांत चट्टोपाध्याय की, वो कह उठे कि व्हाट अ रिलीफ टू फाइंड आफ्टर ऑल अ ट्रूली हिस्टोरिकल प्रॉफिट टू बिलीव इन। तो वो रूहें जो तड़प रही हैं कि वो खुदा को पाएं, वो मजहब को पाएं, सच्चाई को पाएं, उनके लिए मरम है कुरान, तस्कीन है कुरान, कि तलब का जवाब है कुरान। जिस सच्चाई को तुम ढूंढ रहे हो और अपने मखसूस मियार के बिना पर, मैं ये भी नहीं कहता कि हिस्टोरिकल जो स्टैंडर्ड है वो कोई मुकद्दस चीज़ है, लेकिन मैं मुकद्दस नहीं मानता उसको, लेकिन जब इंसान पर छाया हुआ हो मियार तो क्या करेंगे, मुझे बताइए क्या करेंगे। आज के इंसान पर यही मियार छाया हुआ है कि हिस्ट्री से जज करना चाहता है, तो क्या करेंगे आप, कैसे देंगे उसको आप दीन मजहब सच्चाई खुदा। तो कुरान यहाँ कहता है कि जिस मियार पर तुम जांचना चाहते हो उसी मियार पर तुम्हें यहाँ चीज़ें मिल रही हैं और लो उसकी तलब का जवाब उसी मियार पर दिया जा रहा है।
मेरा ख्याल है कि मैं बात बहुत लंबी कर गया और ज्यादा लंबा करना शायद अच्छा ना हो, फिर भी एक मिसाल और मैं आपको समझना चाहता हूं कि वो इंसान जो मजहब को चाह भी रहा है और यकीन भी नहीं कर पाता, ये मजहब को चाह भी रहा है वो, लेकिन जो मजहब ट्रेडिशन है वो यकीन भी नहीं कर पाता, तो उसको कुरान कहता है कि यकीन करो तुम, यानी उसको यकीन का सौदा बना रहा, सौदा बनाकर दे रहा है मजहब को कुरान। तो एक मिसाल और मैं इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि मिस्र में आए और उन्होंने वहाँ पर तौहीद की तबलीग की, हर पैगंबर तौहीदी का अलमदार था, किसी और चीज़ का अलमदार नहीं था, सबका पैगाम एक था, कोई इसमें ना आगे है ना पीछे है, सब एक साथ आगे कुछ इस एतबार से है कि तारीख के एतबार से किसी के पैगाम को तारीख में महफूज रखा, किसी के पैगाम को तारीख में महफूज रखा, इस एतबार से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया फिरौन के सामने, और सारे वाक़ात जो आप जानते हैं उन वाक़ात दौरान ये नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मरहले में फिरौन समुद्र में फ़र्क कर दिया, फिरौन समुद्र में फ़र्क कर दिया। ये वाक़या हुआ बहुत पहले कुरान को उतरने से, हज़ारों साल पहले किसी को भी पता नहीं था, सारी दुनिया में एक इंसान नहीं था, खुद यहूद जिनके जरिए से वो डूबा था वो, उसे ही पता नहीं था कि फिरौन की लाश कहीं मौजूद है, किसी को पता नहीं था, इस सारी दुनिया में एक इंसान नहीं था बशमूल फिरौन, बशमूल यहूद के, किसी को पता नहीं था। उस वक्त कुरान में याद करती है कि अल्यौम नुनज्जी का बेबदन एक लतकून लमन खल्फक आया, अल्यौम नुनज्जी का बेबदन एक लतकून लमन खल्फक आया, कि फिरौन से अल्लाह तआला अल्लाह ताला की मशियत जो है वो गोया हुई और फरमाया कि आज हम तुम्हारे जिस्म को महफूज रखेंगे, बचा कर रखेंगे, अल्यौम नुनज्जी का बदन का बदन का लफ्ज बिल्कुल क्लियर लफ्ज, कोई इश्तबा नहीं इसके अंदर, कि आज हम तुम्हारे बदन को महफूज रखेंगे ताकि तुम्हारे बाद वालों के लिए निशानी, आज हम तुम्हारे बदन को महफूज रखेंगे ताकि तुम्हारे बाद वालों के लिए निशानी। ये जो बात कहेगी कुरान में, ये फिरौन के गरकाबी से लेकर और कुरान के नूर तक किसी को पता नहीं था, हत्ता कि जब कुरान उतरा उस वक्त तक किसी को पता नहीं था, हत्ता कि कुरान के उतरने के हजार साल बाद तक भी किसी को पता नहीं था। हैरत अंगेज बात की, कुरान के उतरने के हजार साल बाद तक भी किसी को पता नहीं था कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को कहीं महफूज कर रखा है कि बात वालों की निशानी बन सके। ये पता चला है सिर्फ 19वीं सदी में पहली बार। उसका किस्सा यह था कि इम्कानी तौर पर उसकी लाश हो सकती थी अहराम में, मिस्र में जो अहराम है, अहराम हकीकत में मकबरे हैं, बादशाह ने मिस्र के मकबरे हकीकत, तो ऐसा हुआ कि कई लोग बाद के जमाने मौजूदा जमाने में तहकीकात शुरू हुई तो लोगों ने अहराम के अंदर जाकर देखना चाहा कि क्या है, तो उसमें कई लोग गए और मर गए, जैसे दाखिल सौर मर गए, तो मशहूर ये हो गया कि फराना की नहूसत जो है उसकी वजह से वो हलाक हो गए, ये मशहूर होगा मिस्र फराना की नहूसत, उनकी लानत और नहूसत जो है उसके अंदर है, उसकी वजह से जो दाखिल होता है वो मर जाता है, चुनाचे कई लोग मर गए। बिलाखिर होते 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 लंबा किस्सा इसका है, होते होते लोग अंदर दाखिल हुए और पता ये चला कि अबाबिल ने बेशुमार तादाद में लाखों की तादाद में अहरामों के अंदर है, उनकी पीठ से जो गैस पैदा हुआ, ताफन पैदा हुआ गैस, उसकी वजह जो जाता है वो इनहेल जो करता है मर जाता है, न कि कोई नहूसत फराना। तो खैर, तो बहुत सी लाशें निकाली गई, اور ان پر جو نیا طریقہ ہے, موجودہ زمانے میں سائنس نے ایسے طریقے دریافت کیے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھیک عمر معلوم کر سکتے ہیں کسی کی, کتنے لاکھ سال کی ہے, کتنے ہزار سال کی, کتنے کروڑ سال کی ہے, ٹھیک ٹھیک عمر معلوم کر سکتے ہیں ان طریقوں کو اپلائی کر. تو جو لاشیں نکلی اس میں سے ایک لاش وہ تھی جس کے بارے میں شبہ ہوا, تو اس کو بہت باقاعدہ تحقیق کی گئی تو ٹھیک ٹھیک ثابت ہو گئی ہی وہ لاش ہے جو ڈوبا تھا. یعنی وہ سارے علامتیں, مجھے تفصیل پہ جانے کا موقع نہیں اس وقت, اس کے جسم میں وہ سارے علامتیں نکلی. مثال کے طور پر اس کے جسم پہ اکتا تھی سمندری نمک کی, کہ سمندر میں ڈوب کے مرا ہے, سمندری نمک کی اکتا تھی اور وہی اکتا اس کو بچائی بھی رہی. وہ آپ جانتے ہیں نمک جو ہے وہ پرزرو کرتا ہے, جو لوگ چمڑے کے معاملات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نمک پرزرو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمک کی ایک پوری ایک کوٹنگ کر رکھی تھی جس میں اس کو بچائے رکھا اس کی جلد اس کے جسم کو. الیوم ننجی کا بدن ایک جی تک من خلق آیا. چنانچہ بہت سی تحقیقات کے بعد اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ فرعون وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا. آپ معلوم ہوا کہ فرعون دو تھا اس زمانے میں, یعنی فرعون تو بہت سے بھی ہیں, یعنی فرعون ان کا ایک خاندانی نام تھا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو فرعون تھے. ایک وہ فرعون جس کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی, وہ مر گیا, اس کا دوسرا فرعون آیا اور اسی کے نے انکار کیا, اسی کے غرق ہوا. تو جو فرعون غرق ہوا تھا اس نے انکار کیا تھا, اسی کی وہ لاش ثابت ہو گئی اور وہ آج قاہرہ کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں شیشے کی الماری میں رکھی ہوئی, کوئی اسے جا کر دیکھ سکتا ہے. اس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر مورٹ بکائی نے اپنی کتاب میں, جو کتاب کی ہے کہ بائبل دا سائنس دا قرآن ایسا کچھ نام اس کا. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن کی صداقت کا کوئی ثبوت چاہتا ہو تو وہ جا کر کے قاہرہ کے میوزیم میں اس شیشے کے الماری کو دیکھے جس میں کہ فرعون کی لاش بند ہے اور جو بدبان حال قرآن کی اس آیت کی تصدیق کر رہا ہے. تو میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت کافی لمبا کر دیا. اور ایک مثال اور بھی جی چاہتا ہے کہ آپ سامنے پیش کروں, وہ مثال ہے گگارین. آپ جانتے ہیں گگارین وہ شخص ہے جو پہلی بار جس نے خلا کا سفر کیا تھا, روسی خلا پاس گگارین. تو یہ 1963 کا واقعہ ہے. تو گگارین نے سفر کیا تھا, اس کی یادداشتیں چھپی ہیں, اس میں بڑی دلچسپ سے باتیں ہیں. اس میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلا سے میں نے جب زمین کو دیکھا, خلا میں جب وہ اوپر بلند ہو کر کے خلا میں جب پہنچا اور وہ زمین کا مشاہدہ اس نے کیا, تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ زمین کے اوپر میں نے اندھیرے اور اجالے کے ریپڈ سکسیشن کو دیکھا. ریپڈ سکسیشن یہ لفظ استعمال کیا ہے, اندھیرے اور اجالے کے ریپڈ سکسیشن کو دیکھا. ریپڈ سکسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ تیز تسلسل, اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تیز تسلسل, یعنی ایک کے بعد ایک معنی. اسے ایک گول چیز ہو اس پر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک والی چیز ہو رہی ہے. آپ اور ٹھیک یہی آیا قرآن بید میں, وہ اتلو بہو حسیسا, یعنی قرآن بید میں ایک دم یہی لفظ بلند یہی بات ہے قرآن بید میں کہ زمین کے اوپر دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اتلو بہو حسیسا, اس کے معنی یہ ہیں کہ گگارین نے تو خلا میں جا کر دیکھا جبکہ راکٹ ایجاد ہو چکا تھا, قرآن کے زمانے میں کیسے کسی نے دیکھا مجھے بتائیے. یعنی وہی منظر, اس منظر کو کہ زمین کے اوپر رات اور دن تیزی سے دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, ایک ریپڈ سکسیشن جاری ہے, اس کو وہی کہہ سکتا ہے اس نے دیکھا ہو. دیکھا تو کہہ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, یہ لفظ نہیں بول سکتا ہو, یہ لفظ ہی نہیں بول سکتا وہ شخص جس نے دیکھا نہ کہ اس کے اوپر رات اور دن رات اور دن رات اور اس طریقے سے چل رہے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تو ایسا ہے, زمین جو ہے اس کی گردش دو ڈھنگ کی ہے, ایک آربٹ پر ہے, ایک ایکسس پر ہے. آربٹ پر اب گردش اٹھتی ہے تو وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, ایکسس پر اس کی جو ہے اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے, اپنی محور پر یوں گھومتی ہوئی وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو اپنے محور پر ایکسس پہ جو گھوم رہی ہے زمین, اس کی وجہ سے رات دن پیدا ہوتا ہے. تو اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ادھر رات ہے ادھر دن ہے, ادھر رات ہے ادھر رات ہے دن ہے, مسلسل رات اور دن چل رہے ہیں اس کے اوپر, ایکسس کی جو گردش ہے اس کی بنا پڑ. تو اس کی بہترین تعبیر ریپڈ سکسیشن ہے, ان تیز تسلسل رات اور دن کا, اندھیرے اور اجالے کا. جس شخص نے خلا میں یہ دیکھا وہی یہ لفظ بول سکتا تھا. تو مجھے بتائیے کہ قرآن کے زمانے میں کس نے خلا میں دیکھا تھا اس کو؟ اس کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خالق جو ہے زمین و آسمان کا وہی مصنف ہے, کیونکہ اسی نے دیکھا ہو, کون سے کوئی انسان نے دیکھا نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طریقے سے 20 صدی میں ایک شخص نے خلا میں بلند ہو کر زمین کے اوپر, کیونکہ زمین سے دکھائی نہیں پڑتا, یہ زمین سے آپ چاہیں کہ اس ریپڈ سکسیشن کو دیکھیں تو ممکن نہیں ہے دیکھیں, یہاں تک نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو دور جانا پڑے گا, آپ کو 25,000 میل کی بلندی پہ جانا پڑے گا, تب دیکھ پائیں گے آپ. اس وقت کا سادھن نہیں تھا, ایسا سادھن نہیں تھا. تو یہ جو آیت ہے, یہ ایک سے زیادہ جو آیت کی قرآن کی یہ بات آئی ہے کہ تو بر اللہ نہار ان الفاظ میں آئی ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے زمین کے اوپر رات اور دن کو, کہیں ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کے الفاظ ہیں. تو یہ لفظ وہی بول سکتا ہے جو زمین کے اوپر اس واقعے کا مشاہدہ کر رہا ہے. دوسرا شخص بول نہیں سکتا ہے اس الفاظ. تو یہ ایک واضح کھلا ہوا ثبوت ہے کہ قرآن کا مصنف وہ ہستی ہے جو اس وقت بھی زمین کو دیکھ رہا تھا جبکہ گگارین نے نہیں دیکھا. کھلا ہوا ثبوت سے بات ہے کہ زمین کا یہ واقعہ جو صرف خلا سے دکھا سکتا ہے, سطح در سے نہیں دکھا سکتا. سطح پر کھڑے ہو کر, زمین کے سطح پر کھڑے ہو کر یا کسی پہاڑ پر بھی کھڑے ہو کر کے آپ اس مندر کو نہیں دیکھ سکتے. یہ مندر آپ نے, اس کے لیے آپ کو خلا میں جانا پڑے گا. تو یہ واقعہ کھلا ہوا ثبوت بات کا ہے کہ قرآن کا مصنف ایک ایسی ہستی ہے جو زمین کو بلند تر مقام سے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جبکہ گگارین نے نہیں دیکھا تھا, اور وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہتا ہے. تو میں اب اسی مثال پر میں باتوں ختم کرتا ہوں. باتیں تو بہت سی ہیں, میری بہت دلچسپی کا موضوع یہ ہے, لیکن میں اس کو ختم کرتا ہوں, اسی بات دہراتا ہوں دوبارہ. یہ باتیں میں نے اس موقف میں کہی ہیں کہ بے شمار انسان اپنی فطرت کے تقاضے کی بنا پر خدا کی طلب میں اس مذہب کی تلاش کر رہے ہیں, وہ سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں وہ پاتے ہیں. تو اب ان کے اندر ایک عجیب سا وہ پیدا ہوتا ہے. تو قرآن اس بات کا جواب ہے کہ دیکھو یہاں وہ چیز موجود ہے. قرآن کو لینے کے لیے تمہیں تاریخ چھوڑنا نہیں پڑے گا, قرآن کو لینے کے لیے تمہیں راضی کو چھوڑنا نہیں پڑے گا, قرآن کو لینے کے لیے تمہیں سائنس کو چھوڑنا نہیں پڑے گا. قرآن کے زمین پر کھڑے ہو کر کے تو وہی انسان رہو جو انسان تم ہو, علمی انسان, تاریخی انسان, ریاضیاتی انسان, اپنی ساری حیثیتوں کو باقی رکھتے ہوئے تم قرآن کو لے سکتے ہو. اس سے بڑا قرآن کا کیا یعنی دین ہو سکتا ہے کسی کتاب کا؟ وہی چیز جو فطرت میں آپ کے ہے اسی چیز کو دے رہا ہے, بغیر بدلے نہیں سکتے, بغیر بگڑے نہیں سکتے, اس سے کوئی دین نہیں ہو سکتی کسی کتاب کو. سکتا تو میں اسی پر اپنے باتوں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس بات کو, اس چھپی ہوئی حقیقت کو لوگ ہم رکھ سکیں دنیا کے سامنے. وہ روحیں جو تلاش میں ہیں سچائی کی, انہیں بتا سکیں کہ دیکھو سچائی یہاں ہے, اسی شکل میں سب چاہتے, اس شکل میں موجود ہیں سچائی. تو میں اسی کے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سمجھیں اس حقیقت کو کہ کیا ہے یہ چیز, اس کے راز کو سمجھیں, گہرائی کو سمجھیں, اور پھر اس کو دنیا والوں پر واشکاف کر دیں, دنیا پر کھول دیں, تاکہ اللہ کے بندے جو سچائی کو چاہتے ہیں سچائی کے دروازے کھل جائیں, کے لیے وہ سچائی کے دروازے میں داخل ہو سکیں, اللہ کے رحمت میں رشتے دار بن سکیں. وہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.